रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोई अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपा मो पर करहु यो हरि देव कंत सदगुरु से देवी नदी पर ब्रह्म सो प्रणाम अनंत कोटि संत रामदास निसदिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। आज का लेख बहुत अच्छा लेख है, सभी बातें अच्छी हो। आज अपने अनुभव की कुछ विशेष बातें सेठ जी बता रहे हैं। ये प्रवचन वैशाख सुदी छठ संवत 1995 कर्णवास में दिया था, दिनांक 5 मई 1938 76 वर्ष पहले का। वास्तव में बाहर भीतर से सच्चा वैराग्य हो ऐसे महापुरुष ही वैराग्य के विषय में कह सकते हैं, और ऐसे पुरुषों के वचनों का ही असर पड़ता है। फिर भी महात्माओं की सुनी हुई बात स्वभाव से जो ख्याल में आ जाएगी वे निवेदन के रूप में प्रार्थना की जाती है। वास्तव में वैराग्य कहने की सिखलाने की वस्तु नहीं है। क्षणिक वैराग्य तो सभी को होता है। संसार के पदार्थों में वैराग्य होता है, उसमें एक कारण है भय, दूसरा कारण है दुख वृत्ति, तीसरा कारण है घृणा, चौथा कारण है अनित्यता। ये वैराग्य के कारण है। ये जैसे वैद्य कहता है अमुक वस्तु मत खाना नहीं तो मर जाओगे, तो यहां मरने के भय से हमको वो पदार्थ अच्छा तो लगता है पर खाएंगे नहीं, लेकिन उसका त्याग तो हो ही गया, परंतु इसको कोई बढ़िया वैराग्य के कोटि में नहीं कह सकते। लेकिन विषयों का त्याग तो यदि भय से भी होता है तो करना चाहिए। दूसरी बात है, विषयों में जो सुख बुद्धि हो रही है उसका अभाव होकर उसकी जगह दुख बुद्धि हो जाए, वह भय से ऊंचा है। यह वैराग्य भय से ऊंचा है। संसार के विषयों में सुख दिखे ही नहीं, दुख ही दुख दिखे, ये भय से ऊंचा है। संसार के पदार्थ तो नष्ट हो रहे हैं, टिकते ही नहीं है और स्वप्न की तरह दिखते हैं। बायोस्कोप में जैसे आग दिखती है पर है नहीं, पानी दिखता है पर है नहीं, खाने की वस्तु दिखती है पर है नहीं, ऐसे संसार को देखने वाला होता है वो भय से और दुख से भी ऊंचा वैराग्यवान होता है। अब आप पूछते हैं कि वैराग्य हो कैसे, वैराग्यवान की स्थिति कैसी होती है, उसका फल क्या होता है, वैराग्य कैसे हो, स्वरूप क्या, परिणाम में फल क्या होता है, इस पर विचार करो। ऊंचे से ऊंचा वैराग्य है, उसको पातंजल योग दर्शन में कहा है तृष्णा का अभाव। भीतर में किसी प्रकार किसी वस्तु की कभी आवश्यकता ही पैदा न हो, उसकी इच्छा ही पैदा न हो, वो बड़ा वैराग्य होता है। विवेक बुद्धि से जो वैराग्य होता है उसको पर वैराग्य बोलते हैं, ऊंचा वैराग्य बोलते हैं। सारांश यह है कि तृष्णा का अभाव ही वैराग्य है। गीता जी में कहा यह सर्वत्रा नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषयों का त्याग तो कोई हठपूर्वक भी कर सकता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, परंतु उसकी आसक्ति तो रही जाती है। रसवर्जम रसोप्यस्य, सारी इंद्रियों के द्वारा विषय सेवन नहीं करना ही निराहार है। विवेक द्वारा सेवन छूट जाए पर आसक्ति बनी रहती है, तो आसक्ति का अभाव तो परमात्मा की प्राप्ति में ही होती है, तब लेश मात्र भी ये आसक्ति नहीं रहती। साधन में जब वैराग्य होता है तब बाहर बाहरी तब भारी लहर उठती है। अब अच्छी बात आ रही, रोमांच होता है, बेपरवाही होती है, वह ब्रह्मा तक के लोक को भी कुछ नहीं समझता, ब्रह्म लोक के भोगों की तरफ निगाह जाती नहीं। जैसे अमीर आदमी शाल ओढ़कर मुग्ध होता है, पैसे वाला आदमी शाल ओढ़ करके बड़ा मुग्ध होता है, ऐसे ही वैराग्यवान आदमी चट ओढ़ करके मुग्ध होता है। वैराग्य का एक अलग ही नशा रहता है, जैसे भांग का नशा है, मदिरा का नशा है, परंतु वैराग्य के और भांग के नशे में अंतर है। वैराग्य के नशे में उपरामता की बढ़ोतरी होती है, उसकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। भांग के नशे में सुख प्रतीत होता है, संसार का अभाव मालूम देता है, पर वो तामसी है, उसमें अज्ञान काम करता है, जी दुख पाता है। वैराग्यवान को मोह नहीं होता, ज्ञान विवेक सब जागृत रहते हैं, ज्ञान की दीप्ति होती है, तब त्रिलोकी का ऐश्वर्य उसको धूल के समान प्रतीत होता है। वैराग्यवान पुरुषों के संग से भी वैराग्य होता है। विरक्त के संग की बात ही क्या है, उनके ध्यान करने से भी वैराग्य होता है। वीतराग विषयम वा चित्तम योग दर्शन में कहा है, वीतराग पुरुष जिसकी चित्त का विषय हो वही वैराग्य, ऐसी महिमा है। अब हमारी बीती हुई बात बताते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, स्वामी मंगलनाथ जी महाराज चूरू पधारे थे, तब मैं 14-15 वर्ष का था। उस समय स्वामी मंगलनाथ जी की उपरामता हद दर्जे की थी। उस समय कोई प्रश्न करता तो वे जवाब देते थे, यदि किसी ने दुनिया की बात चलाई कि शंकर शंकर शंकर, ऐसा करते करते जंगल में चले जाते। ऐसे बर्ताव से लोग फिर फालतू बात नहीं करते। वह दशा देखकर मेरे दिल पर ऐसी छाप पड़ी, करे जीवन हो तो इनके जैसा हो, मेरे जीवन में भी ऐसा वैराग्य हो सकता है क्या, यदि इनके हुआ है तो फिर हमारे भी होना चाहिए। बस छोड़ो संसार और वन में चले जाओ, यदि वन में कोई आ जाए तो उसको दूर से देख कर ही भाग जाओ, फिर भी कोई पीछे आए तो और आगे भाग जाओ, फिर कोई नहीं आए तो वहां बैठ करके ध्यान में मस्त हो जाओ। बस बारंबार यही बात याद करते करते वैराग्य की भावना छा जाती थी। बस चलो अब चलो वन में चलो। फिर मन में सोचा कि ऐसे चले जाएंगे घर वाले पीछे दौड़ेंगे, वापिस लाएंगे, तमाशा होगा, इसलिए मंगलनाथ जी तो जा सकते हैं पर मेरे तो पिता है, माँ है, परिवार है, अच्छा नहीं लगेगा। यही सोच करके मैंने देखा कि घर में रहते हुए इस बैरागी को बढ़ाओ, ऐसा सोचकर मैं घर में रह गया। घर में रहता उस समय मंगलनाथ जी का स्मरण करता, और जब मैं उनका स्मरण करने बैठता उस समय संसार का एकदम अभाव हो जाता था। बहुत उच्च कोटि का वैराग्य हुआ, भरी जवानी थी, लेकिन एक जगह सोते हुए भी मन के अंदर वैराग्य की लहरें उठती थी, एकदम स्त्री से उपराम था। मैं मन में सोचता कि तेरे अंदर ये वैराग्य कहां से आया रे, इसके लिए तो बड़े बड़े लोग अभ्यास करते हैं पर मेरे अंदर क्यों आया, ये उल्टा हो गया, क्या बात है। बाद में मुझे ध्यान में आता कि ये तो संतों की कृपा है, और जिन संतों को देखकर वैराग्य हुआ उन संतों के अंदर असली वैराग्य है, वो असली वैराग्य की छाप हमारे अंदर पड़ रही है, हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है। मेरे पिताजी को मालूम हुआ कि मैं आजकल थोड़ा वैराग्य में हूं, तो वो मेरे को लाकर इत्र देते परीक्षा करने के लिए कि ज्यादा बढ़िया सुगंधदार इत्र है, लगा ले। पिताजी ने कह दिया, मन नहीं होता था पर पिताजी ने कह दिया लगा ले, तो उनकी बात को कैसे काटूं। पर मैं इत्र लगाता मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई पेशाब लगा रहा हूं, संसार के अच्छे भोग मुझे घृणित प्रतीत होते थे। कोई फूल माला देता कि आपका स्वागत करते हैं, फूल माला पहनाते हैं, उस समय मन में आती कि देखो ये मुझे जूते की माला पहना रहे हैं। अमीर आदमी पुष्प को सूंघकर आनंद मनाता है, परंतु मेरे पास में कोई फूल लाके देता तो मुझे उस फूल में दुर्गंध मालूम देती थी। और मैं क्या कह सकता हूं, होली पर जैसे राख कीचड़ से डरते हैं, ऐसे में मान प्रतिष्ठा आदर सत्कार से डरता था, ग्लानी होती थी, क्या मान है, टट्टी पेशाब से भरा हुआ, मांस से भरा हुआ शरीर, इसका मान है, ये टट्टी पेशाब का मान हुआ, ऐसे भावना रहती थी। वैराग्य होकर दृष्टि में सृष्टि रहती नहीं थी। कई बार मैं बार बार संसार को याद करता, जबरदस्ती अपने मन को संसार में लगाता, संसार के अंदर सुख देखने की भावना भी करता पर संसार याद ही नहीं आए, मुझे सुख दिखे ही नहीं। आज लोग कहते हैं कि हम भगवान का ध्यान करते हैं लेकिन संसार का चित्र आता है, परंतु वैराग्य पूर्वक ध्यान करे तो याद करने पर भी संसार याद नहीं आता। खूब वैराग्य की रस बुद्धि खूब भरी रहती, सब फीके मालूम देते। जैसे सूर्योदय होने पर तारे फीके लगते हैं, ऐसे संसारी पदार्थ फीके निस्तेज और घृणित प्रतीत होते थे। उपरामता के समय वृत्तियां उधर जाती नहीं थी। वैराग्य क्या हो? वैराग्य तो तब हो जब पहले राग और फिर वैराग उधर वृत्ति न जाए। क्या वैराग्य होगा? ये उपरामता ही उपरामता रहती। आपने पूछा कि वैराग्य का फल क्या है? वैराग्य का फल उपराम होता है। ऐसे समय में ध्यान अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौनते हैं वैराग्येण च गृह्यते। भगवान के ध्यान में अभ्यास की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वैराग्य की आवश्यकता है। आज संसार के भोगों में तो राग पड़ा है, फिर कहते हैं हम भगवान का ध्यान करते हैं मन संसार में जाता है, तो भाई वहां वैराग्य नहीं किया। वैराग्य करो फिर ध्यान करो, अपने इष्ट का दर्शन होगा। गीता में कितनी बढ़िया बात है, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। ये अवस्था होती है उस समय जब दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र लेकर संसार को काट देते हैं, अर्थात संसार से वृत्तियां हटा लेते हैं। अत्यंत उपराम होता है। उस पद को खोजने के बाद फिर वापस इधर संसार की तरफ मुड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब उसकी शरण ले ली, अब ले ली, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें कोई चिंता नहीं। उसका चिंतन ध्यान के अलावा दूसरी तरफ वृत्ति न जाए। ऐसा रस मिलता है, अमृत की वर्षा होती है, वर्षा में कमी नहीं होती, पेट भरता नहीं। ध्यान जो होता है उसमें मन बुद्धि इंद्रियां सब एक में रम जाती हैं। ये रसराज आनंद है। हम इसको किन शब्दों से कहें, वो शब्द पीछे छूट जाते हैं और वो रस आगे चला जाता है। अंतःकरण से उस अमृत का पान हो रहा है। वृत्तियों की सामर्थ्य नहीं कि वृत्तियों की सामर्थ्य नहीं कि वहां से वृत्ति हट जाए, गला कट जाए तो भी आपत्ति नहीं। वो एक ऐसा अलग विलक्षण ध्यान है। मछली की तड़पने से अधिक तड़पना होता है, पर उस तड़पने में आनंद बहुत है। यदि कोई ध्यान से छुड़ा दे तो उसके लिए ये श्लोक घटा लो, निर्माण मोह जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है, वहां अनुभवी कभी नहीं जाता। ये तो जल दिखता है थोड़ा ही, मूर्ख होता है वो जाता है, हिरण दौड़ता है, और जो कोई उसके पीछे दौड़ता है तो लोग हंसते हैं, जानने वाले समझदार, अरे जल तो है नहीं दौड़ता है। इसी प्रकार संसार के पदार्थ मृग जल के समान है। ऐसा जिसको प्रतीत होता है वो कहां राग करेगा, किससे चिपकेगा, किससे आसक्ति करेगा। नित्य ध्यान में मस्त और निवृत्त काम हो जाए, कामना है ही नहीं। सुख दुख हर शोक उसके शब्दों में ही नहीं आता, वो इस क्षेत्र का प्राणी नहीं रहा। ऐसा पुरुष ज्ञानी जन कहते हैं वो तत्पद को प्राप्त हो गया। जीवन मुक्त के आगे ध्यान जनित आनंद के सामने अभ्यास आभास मात्र है। ध्यान जनित आनंद भी परमात्मा की प्राप्ति के आनंद के सामने समुद्र के बूंद के आभास के समान भी नहीं है। ध्यान का जो आनंद है, ध्यान जनित आनंद भी परमात्म प्राप्ति का आनंद के समुद्र के बूंद के आभास के समान भी नहीं है, उसकी तुलना ही नहीं होती। ऐसे सुख के रहते हुए क्या संसार के भोगों में रमते हो? संसार के भोगों को विष्ठा के कीड़े भोगा करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं कि जो संसार के भोगों में रमता है वो मान मनुष्य नहीं है, वो विष्ठा का कीड़ा है। ये चेताने के लिए कहा है, अपमान करने के लिए नहीं कहा है। जो सुख इंद्र को इंद्राणी के साथ होता है वही कुत्ते को कुत्ती के साथ होता है, ऐसा दधीची ऋषि ने इंद्र को कहा है। तुम्हारे और कुत्ते में कुछ अंतर नहीं है इंद्र, चले जाओ यहां से। दधीची जिस आनंद में थे, जो उनकी शूकर कूकर के समान वह सुख दिखता था, दधीची किस आनंद में थे? इंद्र का आनंद तो उनको शूकर कूकर के समान दिखता था। ऐसे पूर्ण वैराग्य के नशे में बिचरते रहो, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ऐसे पुरुष जहां से निकलते वहां वैराग्य की बाढ़ आ जाती है, उसके चारों तरफ वैराग्य मूर्तिमान रहता है। जिस रास्ते से निकलते हैं वहां वैराग्य फैल जाता है, जैसे किस्तूरी की हवा फैल जाती है वैसे ही वैराग्य की हवा फैल जाती है। कस्तूरी की हवा तो फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, पर वैराग्य की छटा कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। वैराग्य के परमाणु सुगंध के परमाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, वे अंतःकरण में गहरे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। उनके दर्शन स्पर्श भाषण चाल से वैराग्य टपकता रहता है। ऐसे महापुरुषों के महापुरुष के वैराग्य के परमाणु नेत्र से जाकर हृदय में धधकते लगते हैं। एक बार की बात है, सच्ची बात है, एक संत थे, हमारे अपने संप्रदाय के तो नहीं थे, और कहीं थे, महाराज जी के पास बैठे, घड़ी थी, यूं देखा, महाराज जी ने गौर से यूं देखा, घड़ी उतार दी, महाराज जीवन भर घड़ी नहीं पहनूंगा। महाराज जी ने एक शब्द नहीं कहा, यूं देखे उसी समय, उधर जीवन भर घड़ी नहीं पहनूंगा। सच्ची बात है, महापुरुष के वैराग्य के परमाणु नेत्र से चलकर हृदय में धधकने लगते हैं और अंदर वैराग्य को जागृत कर देते हैं। विवेक ज्ञान की जागृति होती है, त्रिलोकी तुच्छ प्रतीत होती है और पिछले जीवन पर पश्चाताप होता है। अच्छा, कोई परवाह नहीं, अब भी सब कुछ हो जाएगा, ऐसा सोचकर वो फिर वैराग्य में मस्त रहता है। ऐसी वृत्ति होने पर वैराग्य मालूम पड़ता है। वैराग्य वृत्ति होने से संसार से घृणा वृत्ति करनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना, अपना आप होता रहता है। और उपरांत में तो वे सब रस हो जाते हैं। दूसरों की संसार में जाते देखता है तो उनकी मूर्खता पर हंसी आती है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर हम भोगों में बितावे तो हमारे में और कुत्तों में सुअर में क्या अंतर है, इस बात पर विचार करना चाहिए। जो आनंद केवल मनुष्योनि में मिल सकता है वो मनुष्योनि वालों को ले ही लेना चाहिए। दूसरा सुख तो सब योनियों में मिलता है, मनुष्य योनि में साधन और योनि में साधन नहीं है, मनुष्य योनि में साधन है। ये अधिकार आपको दिया, इसको ठुकराओ मत। इसको ठुकराने से बड़ा शोक होगा और इससे बढ़कर और लज्जा की क्या बात होगी। भगवान आपको अधिकार दे, भगवान दे और आप ठुकराओ। बड़े दुख की बात है। क्या कहा जाए, लालटेन होते हुए भी कुएं में गिरता है। बस जिस किसी प्रकार से वैराग्य हो और प्रभु में ध्यान लगे, उस ध्यान के पास अपार आनंद है। उस आनंद में तैरते रहो, डूबते रहो, उछलते रहो, आनंद के हिलोरों में डूबते रहो, अघाओ ही मत। हर समय आनंद, श्रोता लगा है और पान हो रहा है, श्रोत्र लगा हुआ है और पान हो रहा है, कान लगे हुए और आनंद का पान हो रहा है, ऐसी दशा में एक क्षण भी वृत्ति नहीं हटती, अगाता ही नहीं। इस प्रकार सारा जीवन बीते तो आप देखो आपका जीवन कितने आनंद में डूबेगा। नारायण नारायण नारायण।